16 मेरे द्वितीय पुत्र का नामकरण हुआ। सभी उसके अनेक सुंदर सुंदर नाम सुझा रहे थे, परंतु मैंने उसका नाम ऋषिसेन रखने का आग्रह किया। ऋषिसेन के आगमन से मुझको मन बहलाने का एक सुंदर साधन प्राप्त हो गया। वह हाथ पर लगातार ऐसे चलाता था कि कभी कभी मुझको डर लगने लगता था। घर और संतान, यही स्त्री का जीवन होता है, उसी में उसका मन रमता है। मेरा पाला पुत्र सुदामन द्रौपदी के स्वयंवर में अकारण ही प्राण गंवा बैठा था। उसकी स्मृति कभी कभी मेरे हृदय में कसक उठती थी, परंतु उसको तो भूलना ही था। सुप्रिया और मेघमाला ऋषिसेन को पल भर भी गोद में से नहीं उतारते थे। ब्रिशु ब्रिशु कहते हुए वे उसको बार बार चूमती। उस समय मुझको ऐसा लगता जैसे मेरे सर्वांग पर कोई सुख के सहस्त्र मयूर पंख फेर रहा हो। सुदामा ने दूसरे देह धारण कर मेरे उदर में आ गया है, ऐसा मुझे लगता। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे एक एक पल कला से बढ़ता जाता है, वैसे ही वह सबकी स्नेह छाया में बड़ा होने लगा। उसकी अंगयष्टि सबकी दृष्टि को आकर्षित करती थी। नित्य मेरे मन में आता था कि यदि उसको कवच कुंडल होते तो बहुत ही अच्छा होता। ऋषिसेन को देखने के लिए महारानी भानुमति और युवराज की दुशाला देवी आई। महारानी से मैं पहली बार ही मिल रही थी। मैंने सोचा कि उनका स्वभाव बड़ा विनोद प्रिय होगा, लेकिन मैं बहुत ही अभिमानी निकली। मुझसे मिलते हुए उन्होंने मुझसे और कुछ न पूछकर बड़े मुर्दे उखाड़ते हुए कहा, मेरा मिलने के लिए आना तुमको अच्छा नहीं लगा हो। क्यों, मैंने पूछा। मैंने तुम्हें सौत ला कर दी है ना, इसीलिए। छी, मैंने कभी यह सोचा भी नहीं, बल्कि सुप्रिया ने तो मेरा आनंद न जाने कितना बढ़ा दिया। इस समय तो यह बात ठीक है, लेकिन कल को जब उसके भी बाल बच्चे हो जाएंगे तब भी ये संबंध ऐसे ही रहेंगे, यह आवश्यक तो नहीं। हम दोनों ही अंगराज के पति हैं, हमारी इच्छा के अपेक्षा अंगराज की इच्छा ही का ही महत्व अधिक है, मैंने कहा। अंगराज के विशाली भवितव्य अंगराज की ही क्या साक्षात परमेश्वर की इच्छा की अपेक्षा कर सकता है, वे बोली। वे चिड़ी हुई सी इस प्रकार बातें कर रही थी जैसे मुझसे तर्क वितर्क करने आई थी। मैं चुप हो जिस काम से वे आई थे वह यूं ही रह गया। विश्वसेन को उन्होंने देखा भी नहीं। विरागी दुशाला देवी ने अवश्य उसको गोद में लेकर उसके दोनों कान बार बार टटोल कर देखे। उसके घुंघराले बालों को उन्होंने बार बार चूमा। 17 मैं सुख के शिखर पर थी, पर कभी कभी मुझको राजमाता कुंती देवी की याद आ जाती थी। इसीलिए मैंने सत्यसेन दादा से विशेष रूप से कह रखा था कि उनके संबंध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हुआ करे मुझे बता दिया करे। उन्होंने जो कुछ कहा था उसको सुनकर मुझको पांडवों के कर्तृत्व पर आश्चर्य होता था। केवल 6 महीने में ही उन 5 शक्तिशाली वीरों ने खांडव वन का घना जंगल काट कर साफ कर दिया था। वन में जो गगन चुंबी वृक्ष थे वे धराशायी कर दिए गए थे। सदैव कंधे पर गदा धारण करने वाले युवराज भीम प्रातःकाल कंधे पर धार धार परशु ले रखकर अरण्य में जाते तो फिर एक योजन के घेरे के अंतर्गत समस्त उबड़ खाबड़ भूमि वृक्षों और कटीले झाड़ झंखाड़ों को नष्ट करके ही लौटते। 5 में से एक को अपनी माता और पांचाली की रक्षा के लिए छोड़कर सुबह ही शेष चारों 4 दिशाओं में जाते और काम करने लगते। हजारों वर्षों से जिस धरती को कभी सूर्य का प्रकाश स्पर्श नहीं हुआ था उनके कर्तृत्व से वही अप्रकाश के स्पर्श से प्रवृत्त हो गई थी। खांडव वन समतल भूमि के रूप में परिवर्तित हो रहा था। एक वर्ष में खांडव वन समतल भूमि में रूपांतरित हो गया। उसके बाद तुरंत ही मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए कारीगरों की सहायता से उन्होंने अरण्य की काष्ठ संपत्ति का उपयोग कर एक प्रचंड प्रासाद बनाना प्रारंभ कर दिया। उस प्रासाद के लिए भीम कंधों पर भारी भारी पाषाण ढो लाते थे। उन 5 अभिमानी राजपुत्रों ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि किसी की भिक्षा पर जीवन नहीं बिताना है। मथुरा के कुशल कारीगर जिस विशाल राजभवन का निर्माण कर रहे थे वह दिन दिन आकाश के उदर में अपना मस्तक ऊंचा करता जा रहा था। अरण्य के जंगली घोड़े पकड़कर नकुल उनको अभ्यस्त कर रहे थे। उन्होंने लकड़ियों के घेरे में सैकड़ों घोड़े बंद कर रखे थे। पांडव क्रमशः जो प्रगति कर रहे थे उसकी अधिक जानकारी हस्तिनापुर में किसी को नहीं थी। मेरे आग्रह पर सत्यसेन दादा कभी कभी पांडव वन जाकर सब बातों का पता लगाकर मुझको बताया करते थे। मैंने उनको सावधान कर दिया था कि इस संबंध में एक भी शब्द महाराज दुर्योधन के कानों में नहीं पहुंचे। उनकी ईर्ष्या पांडवों का पीछा करते हुए कहीं वहां भी न पहुंच जाए इसका मुझको भय बना रहता था। राजमाता कुंती देवी की आशीर्वाद की छाया में पांडव मुझे सुखी प्रतीत होते थे। 18 दिन और रात रूपी चातक पक्षी का जोड़ा हर्ष विभोर होकर एक के पीछे एक दौड़ रहा था। विशेषण कब 2 वर्ष का हो गया यह पता भी नहीं चला। उसका दौड़ने के लिए राजभवन में स्थान कम पड़ने लगा। तात तात कहकर वह महाराज की गोद में चढ़ने लगा। वे तुरंत उसको उठा लेते और दीर्घ समय तक उसका मस्तक सूंघते रहते। उनके पुष्ट बांह पर बैठकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनके कानों के लय से हिलते हुए कुंडलों को एकटक देखता रहता। एकाएक उसके मन में न जाने क्या आता कि दोनों हाथों से पास के कुंडल को टटोल कर वह कहता, ता ता ता। मेरी ओर देखते हुए वे उससे कहते, ऋषु तुझको ये कुंडल अच्छे लगे हैं, लेकिन तुझको मैं ये दूंगा नहीं। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं भाई, इनके लिए कितना मानसिक कष्ट मैंने सहन किया है तो तुझे कैसे बताऊं। उनका कठिन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया हो इस मुद्रा से वह हाथ से कुंडल को तत्क्षण छोड़ देता और मेरी ओर हाथ बढ़ा देता। मैं उसको लेते हुए कहती, अभी 2 वर्ष का भी नहीं हो पाया है, लेकिन आपकी बात अभी से समझने लगा हूँ, बड़ा होने पर यह मेरी तो बात बिल्कुल नहीं मानेगा। यह कैसे हो सकता है वैशाली, वह कर्ण का पुत्र है, वह अपनी माता को कभी नहीं भूलेगा, वे अभिमान से कहते। 19 विशेषण ने अपने आगमन से मानव राजभवन को निनादित करने का निश्चय कर लिया था। उसके शुभ सूचक जन्म के बाद राजभवन अनेक काल बाल किलकारियों से भर गया। विशेषण अभी 2 वर्ष का नहीं हुआ था कि महारानी भानुमति के भी पुत्र हुआ। उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। उसका नामकरण बड़ी धूमधाम से हुआ। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि वह कुरुओं का भावी राजा था, महाराज धृतराष्ट्र का नाती था। लक्ष्मण के जन्म के 1 महीने बाद सुप्रिया का भी 1 पुत्र हुआ। वह चित्रलिखित सा सुंदर था, इसलिए उसका नाम चित्रसेन रखा गया। चित्रसेन का जन्म होते ही महाराज से भी अधिक अधीर होकर मैं सुप्रिया के भवन में गई। उसके शैया पर पड़े नवजात शिशु की ओर मैंने उत्सुकता होकर देखा, लेकिन उसके भी कुंडल नहीं थे। महाराज की किसी भी संतान को कवच कुंडलों का दैवी वरदान प्राप्त नहीं होगा, यह अब निश्चित हो गया था। लेकिन यह निश्चय हो जाने से भी अधिक गंभीर हो गए थे। उनको वास्तव में कौन सी बात खटक रही थी, इस पर कोई नहीं जानती थी। कभी कभी दिन भर गंगा के जल में सूर्य को अर्घ देते हुए खड़े रहते, भोजन की भी याद न रहती, मुझको उनकी चिंता होने लगी। मेरा पति सामर्थ्यवान था, रूपवान था, गुणवान था। कोई भी स्त्री अपना जीवन सर्वस्व उसके चरणों पर निछावर कर दे, ऐसा अद्वितीय था, परंतु उसके मन की था कोई भी नहीं ले पाया था। मैं अहर्निश उसके पास ही रहती थी, परंतु कभी कभी मुझको यूं ही आभास होता कि मैं किसी पुरुष की छाया में न होकर तेज के वलय के पास ही खड़ू हूँ, और इसीलिए उनके सम्मुख कुछ बातें कहने का साहस भी मैं कभी नहीं कर पाती थी। पहले एक बार युवराज्ञी दुशाला देवी ने मुझको एक प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न मैंने उनको नहीं बताया था। प्रश्न जानने के लिए उन्होंने मुझको बहुत छेड़ा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया था। यह प्रश्न बहुत तनिक अश्लील था। तुम्हारे एकांत मिलन में पति के अभेद्य कवच के कारण कोई बाधा नहीं आती है क्या? दुशाला देवी द्वारा पूछा गया प्रश्न मैं अपने पतिदेव को भला कैसे बता सकती थी। 20 एक दिन अचानक की सूचना मिली कि पांडवों ने खांडवन में एक नगर बसाया है। उसको सुनकर बहुत से लोगों को प्रसन्नता हुई। उस नगर का नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा था, और पांडवों ने यह घोषणा कर रखी थी कि इंद्रप्रस्थ पांडव राज की राजधानी। इंद्रप्रस्थ में बसने के लिए बहुत से पांडव प्रेमी नगरजन अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर छोड़कर वहां जाने लगे। दिन प्रतिदिन इंद्रप्रस्थ लोगों से भरने लगा। गायक, नर्तक, कारीगर आदि अनेक प्रकार के लोग इंद्रप्रस्थ की शोभा बढ़ाने लगे। जिस पांडव वन में पहले वन्य पशुओं के भयंकर चित्कारों के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं देता था, वहां मनुष्यों के कोलाहल ध्वनि गूंजने लगी। संगीत और नृत्य ने वहां का वातावरण झूमने लगा। धैर्यवान और कृतित्वशील वीर अरण्य को भी राजधानी का वैभव प्रदान कर सकते हैं, यह देखकर कुछ लोगों को जैसे आनंद हुआ था, वैसे ही कुछ लोगों को दुख भी हुआ था। हस्तिनापुर में तो ढुंढोरा तक पिटवा दिया गया था कि कोई इंद्रप्रस्थ जाएगा, उसके खेत, धन, संपत्ति आदि सब कुछ उसकी अनुपस्थिति में कुरुओं के राजदंड के अधीन कर लिया जाएगा। वातावरण ऐसा तैयार करने होने लगा कि कौरव और पांडव के 2 अलग राज्य थे। यह बात स्पष्ट प्रतीत होने लगी। जो नहीं होना चाहिए था वह हो रहा था। द्वेष के मेघ दोनों राज्यों के नगरों पर गिरते जा रहे थे। पांडवों को राज्य का उचित भाग यदि दे दिया गया होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत से लोगों का यह स्पष्ट विचार था। लेकिन सत्ता मदिरा की तरह होती है, वह जिनके हाथ में होती है उनको मदांध बना देती है, और जिनके हाथ में नहीं होती है उनको पागल। कौरवों ने भूल की थी, किसी भांति भी उनका समर्थन नहीं किया जा सकता था। लेकिन राज्य का आधा भाग पांडवों को मिल जाने के बाद कुरुवंश के 105 वीर मिलजुल कर रहने लगते, यह भी कोई नहीं कह सकता था। उनके मन एक दूसरे से दूर हो गए थे। यद्यपि हस्तिनापुर में आचार्य द्रोण, विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, राजमाता गंधारी देवी आदि सभी लोग थे, तथापि अपने वंशजों के मन को वे अच्छी तरह समझ नहीं सके थे। प्रत्येक व्यक्ति बिना कुछ से समझे दूसरे को दोष दे रहा था। हस्तिनापुर कहीं तटस्थ प्रेक्षकों के निष्क्रिय विलास संग्रही तो नहीं है, यह उत्कृष्ट संदेह होने लगा था। परंतु इंद्रप्रस्थ इस तरह विकसित हो रहा था जैसे वसंत ऋतु में पलाश फूल उठता है। बातचीत करते समय लोग जब पांडवों का इंद्रप्रस्थ कहने लगे थे, केवल इंद्रप्रस्थ कभी नहीं कहते थे। अनजाने ही बुने जाने वाले धागे मन के आसपास दूरी का जाल निर्माण कर रहे थे। जिस नगर में किसी समय 105 युवराज साथ साथ गर्व से घूमते हुए दिखाई दे गए थे, उसी नगर में अब यह माना जा रहा था कि अब 100 और 5 में विभक्त हो गए। जिनका रक्त का संबंध है वे मन कभी एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए, अंत में वे विनाशक सिद्ध होते हैं। इस बात की नितांत आवश्यकता ही थी कि महाराज, पितामह, महामंत्री आदि जानकार व्यक्तियों में से कोई आगे बढ़कर उनके राज्यों के संबंध सुधारने के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि मानव मन अनेक प्रकार के विचारों के तृणों से भरा हुआ एक कछार होता है। उस पर भ्रम के तुषार कण सदैव मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन मेल कराने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा था। दिन का प्रकाश आभूषण धारण कर उदित हो रहे थे, और रातें अंधकार के आभूषण पहनकर अस्त हो रही थी। जिनकी सीमाएं मिली हुई थी ऐसे उदय राज्य मन में द्वेष का धधकता अंगार लेकर कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, यह बात बड़े बड़े राज धुरंधरों को भी नहीं सूझ रही थी। मेरा जीवन सुखी था, लेकिन आसपास के इस कुंठित वातावरण के कारण वह मुझको सुखी नहीं लगता था।